शांति। प्रश्न है, कौन सी संस्कार निजी संस्कार वाला बना लो तो उड़ते कला में उड़ते रहेंगे। कला में यहां दिखा है उड़ती कला, एक है रुकती कला, एक है चढ़ती कला, एक है उड़ती कला। अब हाँ, गिरती कला भी होता है। अब देखेंगे पानी, आप उदाहरण तरफ ले लो, उसको जब पानी रहता है बहता है वो कौन सी कला है, उसको चढ़ती कला भी बोल सकते हैं। जब तालाब में रहता है रुकती कला, ठहरती कला, नदी में है तो बहती कला, और जब भाप बनता है उड़ती कला, गिरती कला, झरना में जब गिरता है, और जब बर्फ बनता है वो बाबा कभी कभी मुरली में बोलते हैं ना स्टोन इंटेलेक्ट, पत्थर बुद्धि, तो बुद्धि काम नहीं करते हैं। तो ऐसा हम भी देखेंगे यहाँ, हमारा बुद्धि, हमारा कौन सी कला हम धारण कर ले तो हमारा मन बुद्धि सदा उड़ते रहेंगे। संस्कार सम युक्त कार, सम मतलब सहयोग, कार मतलब कार्य, कार्य में सहयोग देना। और एक एक लेवल करो, सौ सहयोग की भावना, म अर्थात महान बनने की लक्ष्य रखना, क मतलब कर्तव्यपरायण, और र मतलब रूहानियत। ये रूहानियत में आत्मा का जो सात गुण आता है ना वो आ जाता है। गीत भी अच्छी बजाया, प्रभु तेरे रंग में रंग गए। उस दिन संडे की मुरली में आप लोग सुना होगा कितने प्रकार रंग में रंगने के लिए बाबा बोला है, ज्ञान का रंग, गुण का रंग, शक्ति का रंग, शुभ भावना की रंग, मन श्रेष्ठ कर्मों का रंग, ऐसा सब लगाना है। दृष्टि वृत्ति भी हमें पावन बनाना है। आज का मुरली में क्या है, क्रिमिनल लाइ को सिविल बनाना है, क्योंकि सभी तो घर गृहस्थ में रहते हैं, और जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तब हमारा दृष्टि क्रिमिनल नहीं हो सकते हैं। उसके लिए बाबा ने पहले पढ़ाई के ऊपर लक्ष्य दिया है। या इनकम कितना है, आमदनी कितना है, तब तो इतना माने डिफिकल्ट काम को कोई कोई बोलता है ये तो घर घर गृहस्थ में रहते ये संभव नहीं है, लेकिन बाबा क्या बोला, संभव है। आमदनी कितना है तुम्हारा, इसीलिए आमदनी को साफ सन्मुख रखते हुए हम कार्य करते हैं तो ये डिफिकल्ट नहीं होता है। अब एक दो उदाहरण देता हूं, उसमें आप स्पष्ट समझ जाएंगे। मैं तो वो 108 वाला पॉइंट नहीं सुनाऊंगा, दो तीन पॉइंट सुनाएंगे। अब नेल्सन मंडेला का कुछ कुछ स्टोरी सुना होगा, अफ्रीका का जो राष्ट्रपति बने थे, 29 साल उसको कारावास में रखा था, और जब वो राष्ट्रपति बना उनके पीए जो साथ में थे ना, एक दिन रेस्तरा में गया है भोजन, तो सभी ने अपने मनपसंदी भोजन करने के लिए परोसने के लिए उसका जो होटल का इंचार्ज है उसको बताया, और सबने ऐसे दिया है। और जो नेल्सन मंडेला का टेबल था उन्होंने देखा, उसके सामने एक माने व्यक्ति वो भी बैठा है, उसको भी परोस रहे हैं, तो नेल्सन मंडेला इंगित किया है उनको अपने टेबल पर बुला लो। सुना होगा कहानी। तो नेल्सन मंडेला अपने टेबल पर बिठा के उनको खिला रहे थे, लेकिन खिलाते खिले वो खाना खाते खाते उसका हाथ कांप रहे थे, जैसा कोई बहुत बीमार व्यक्ति हो, हाथ से खाना भी गिर रहे थे, आंख में आंसू टपक रहे थे। बाद में अपने साथी नेल्सन मंडेला को पूछा, ये क्या बात है, वहां तो बैठे थे आपने क्यों बुलाया, और वो ऐसा क्यों हुआ, किसी को पता है? वो जो 29 साल जो था ना जेल में, ये जेलर था, हाँ वो कभी इतना निर्यातन करते थे तो पानी मांगता तो क्या देता था, यूरिन दे देता था, यूरिन लेके छिटक देता था उसका घाव में। तो जब हमने सामने खाना खाने टेबल पर बिठाया उसको वो दृश्य, लेकिन देखो बाहर वाला होते हुए भी उन्होंने बदला नहीं लिया। हमारा गीत एक है ना, बदला नहीं लो बदल कर दिखाओ, बाबा का भी यही मंत्र है। जब कलकत्ता में एक हमारा प्रदर्शनी चल रहा था, वहां हमारे प्रदर्शनी के चित्र को जला दिया था, जगदीश भाई ने बाबा को लिखा, बाबा ऐसा ऐसा हुआ, उस टाइम तो फोन आदि बहुत कम थे, तो इसके ऑपोजिट में कुछ लिखूं, बाबा बोला नहीं। वो पत्रिका का नाम था विश्वामित्र, तुम तो विश्व का मित्र हो, जगदीश भाई खूब सुंदर आर्टिकल लिखा है, हम विश्व से कहां अलग है, आप एक तरफा बिना समझे इसका निर्णय ले लिया, तो आप तो अच्छी तरह देखना भी चाहिए ना। बाद में उन्होंने आर्टिकल चेंज करके खूब सुंदर रीति से लिखना शुरू कर दिया। तो बाबा भी बोलते हैं कभी बदला नहीं लो बदल कर दिखाओ। कितना पिकेटिंग किया है, अपना जो निर्मल शांता दादी का जो ससुर है वो मुखिया बन के एंटी ओम मंडली गठन कर दिया है, तो अपना रिश्तेदार है ना। तो फिर भी बाबा ने किसी को पर नहीं समझा, संभाल लिया उस टाइम। ऐसा बदलकर हर चीज को बाबा ने दिखा दिया। तो कौन सी संस्कार धारण करना है, अपने आप को परिवर्तन करके सबके सामने सबूत रखना है। 1990 में, 1990 सन में, मैं जब सेंटर पर आते थे उस टाइम रेगुलर नहीं, 2 महीने में 3 महीने में एक बार आ जाते थे। और हमारा जो कमरा है ना, जहाँ भाई बहन बैठते हैं, 10-12 टोटल बैठते थे, छोटा कमरा। तो हमने एक दिन मैंने सेंटर से कोई, मैंने कलकत्ता सेंटर से कोई बहन आएंगे और अनुभव सुनाएंगे, और ऐसा बोल के हमारे घर में मैसेज भेज दिया किसी भाई को भेज के, जे उस दिन उपस्थित रहना। तो 1990 11 नवंबर शांति दादी ने शरीर छोड़ा था। उनको मधुबन आने का उस टाइम कोई ये नहीं था, वो बांगूर का सारे सब कारोबार उनके हाथ में था, उनके जो भी खजांची का हिसाब किताब सब समर्पित करके निर्मल संत दादी निकल रहे थे। और दादी को बोला मैं एक बार मधुबन जाना चाहती हूँ, फटाफट टिकट करके उन्होंने फिर मधुबन आए। मधुबन आने के बाद यहाँ जिस दिन बाबा आने का डेट है ना, उस दिन शरीर छोड़ दिया अमृत वेला 3-4 बजे के अंदर। तो उसका भोग लगाने के लिए सेंटर में प्रोग्राम बनाया, बोला कलकत्ता से बहन आएंगे, अनुभव सुनाएंगे, आप आ जाना। तो मैं आ गए, उन्होंने वहां 2-3 अनुभव रखा था। वो अनुभव ऐसा है, दादी जी मैंने उसका जीवन काल तो बहुत एक्यूरेट था। एक बार दादी जी को तबियत थोड़ा, अपेंडिक्स क्या बोलते हैं वो, एक बीमारी होता है, बहुत दर्द होता है। तो बाबा को बोला ऐसा बहुत दर्द होता है, बाबा ने डॉक्टर से सलाह किया और डॉक्टर बोला हॉस्पिटल भेजो, ले आओ, यहाँ सुविधा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी थोड़ा हट थे, बोला सुप्रीम सर्जन यहाँ बैठे हैं, हम बाहर क्यों जाए, है तो घर का बहू है ना विश्व रतन विश्व किशोर दादा, उसका लौकिक जुगल, जैसा वो बड़ा भाई का बेटा था, तो बचपन से एकदम बच्ची के तरफ बाबा ने उसको पाला, और बच्ची का ऐसा हट है तो क्या करेंगे, वो तो जाएगा नहीं। उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो दादी उस टाइम क्या, यहां से वो कुर्सी तक भी चल नहीं पाते थे, इतना दर्द होता था। इसका अपेंडिसाइटिस होता है तो उसको पता है, बहुत ना कि बहुत दर्द होता है। तो बाबा ने 12 बजे की 1 बजे से लेकर बैठ गया उनके पलंग पर, और 4 बजे तक बाबा को सकाश देते रहे। तो क्या हुआ, जब 4 बजे तक वो आंख नहीं खुले हैं दादी, लेकिन उसको पता चलता है ऐसा नींद भी नहीं आई, जे कोई कुछ अंदर कटपिट कर रहे, कटकुट कर रहे। तो 4 बजे जब वो आंख खोली तो बाबा ने पूछा रात को नींद आई, तो दादी ने बोला रात को तो नींद नहीं आई, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, बाबा तो ऐसा 1 बजे उठ जाते थे, मुरली लिखते थे, मनन चिंतन करते थे, ऐसे ही बैठ के कर रहे होंगे। तो बोला मेरे को लगा अंदर कोई कुछ काटपीट कर रहे थे, और तो ऐसा होते होते बोला बच्ची थोड़ा चल के आ जाओ ना बाथरूम तक, बाथरूम तक गया, कोई नहीं, दर्द नहीं, कुछ नहीं, ऑपरेशन हो गया। उस टाइम दादी बोलती है, जब मेरे जो अवस्था है, मेरा पांव आ धरती पर नहीं, मैं तो जैसे उठ रहा, तो एक घटना जब ब्राह्मण जीवन में कुछ ऐसा अलौकिक कार्य होता है ना, तो मन कैसा होता है, उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। उस दिन आपको सुनाया था, एक बार मैंने सेंटर के सेवा में 2-3 दिन के लिए घर से निकल गया था। निकल जाने के बाद 3-4 दिन के बाद जब लौट के आए तब देखा हमारे घर में थोड़ा चोरी चकरी हो गए, तो हमारे बड़े भाई क्या सेंटर तक चले गए, बोले वो होता तो एक चोरी नहीं होता, क्योंकि वो जानते थे मैं रात भर ऐसा बैठ के युक्त तपस्या करता था। फिर जब मैं आया तो मेरे को बहन जी ने थोड़ा मैसेज दिया, आपके भाई आया था, आपके घर चोरी हो गए, आप जल्दी जाओ। तो मैं उस टाइम मुख से ऐसा निकला, घर में कुछ जैसा कचड़ा होता है ना वो रह गया था, वो साफ कर लिया। उस टाइम ज्ञान में का बहुत नशा था, नया नया है ना, तो हमारे बहन जी को भी ऐसा बोल दिया। मैं गांव तक आ रहे थे, वहां हमारे हेड टीचर जिस स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्होंने मिला और उन्होंने भी यही बोला, पता है तुम्हारा ऐसा घर चोरी हो गया, तुम्हारा दादा भाई बहुत मन खुन्न है। तो मैं भी उसको नशे में यही बोल दिया, अभी तो हम निश्चिंत है, पड़ोसी उसको चोरी होने का भावना है, हमारा तो घर खाली हो गया, तो निश्चिंत। तो उन्होंने क्या बोला, इसका दिमाग एकदम आउट हो गया। तो घर में ऐसा हुआ, इसका कोई मन में थोड़ा सा भी रिंचक मात्र भी अफसोस नहीं है। तो क्यों बोल रहा हूं, ये जो उड़ती कला की भावना है ना, जैसे क्या बोला था, पानी जब भाप होता है उड़ जाता है, तो उस टाइम हमारा जो मन की स्थिति है उसे उड़ने, ऐसा फिजिकल चीज के बारे में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा कुछ ध्यान नहीं था। तो ऐसा होते होते फिर हमारे भाभी जी घर के सामने आए तो रोने शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा चोरी हो गया। उसको भी मैंने यही बोल दिया, घर में जो डस्टबिन में होता है वो साफ हो गया, आप निश्चिंत रहो, रोने का क्या जरूरत है। तो ऐसा बोलते बोलते तो हमारे बड़े भाई जब मिला, उनके सामने बोलने का हमें साहस तो नहीं हुआ, क्योंकि वो पिटाई करे। बाद में बहुत सारे घटना हुआ है, तो मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं जाता हूं। एक बार की बात है, जब इस मधुबन में जब 93 में आए थे ना, उस टाइम एक ऊपर से कुछ गिरने वाला था, स्काई लैब ना कुछ ऐसा, तो पहला साल है ना, मन बुद्धि इतना फ्रेश। तो एक दिन रात को सोया, सो जाने के बाद लगता है ऐसा स्काई लैब गिरने का डर है ये है, मैंने देखा वो भारत छोड़ के कहीं दूसरे जगह गिर रहे, समुद्र के साइड में। बोला तो नहीं था किसी को, लेकिन उस टाइम वो भारत में भी नहीं गिरा। तो जगदीश भाई का स्टोरी आप देखेंगे तो उसको पहले कुछ मालूम हो जाता था, लेकिन बोलता नहीं था, ऐसा आप देखेंगे, ये शांति दादी का एक और एक स्टोरी सुनाता हूं। कुछ यज्ञ के कार्य के लिए बाबा ने उसको तुरंत काम दे दिया, जाओ बाबा के पास जाओ, ये यज्ञ का बहुत इमरजेंसी काम है, तुम संदेश लेके आना। शांति दादी कभी खाली हाथ नहीं जाते थे, कुछ भोग का सामान लेके जाते थे, लेकिन बाबा का निर्देश है तुरंत जाना है। वो किचन में गया और देखा, एक प्लेट लिया, 8-10 इलायची दाना और जो खंड होता है मिश्री, मिश्री का छोटा छोटा, वो भी 8-10 लेके ऊपर रुमाल ढक दिया और बर्तन में गया। वो मैसेज ले आने के बदले बाबा खुद आ गए। बाबा जब आ गए, एक दूसरे को मैसेज मिल गया, एक दूसरे के पास आना शुरू हो गया। उस टाइम बोलते थे 350-400 तो भाई बहन थे, तो जब संदेश मैंने बाबा आके कुछ बोला तो बहन ने क्या बोला, बाबा टोली दो, 400 भाई बहन को कैसे देंगे। दादी ने माने उस टाइम उसको पता नहीं है, जो प्लेट में रुमाल है, रुमाल के अंदर हाथ ऐसा रखा और सबको देता गया, सबको देता गया, सबको एक जैसे ही मुट्ठी भर के। तो कैसे दिया, ये चमत्कारी किसका है। एक बहन ने बोला, जो मदद करेंगे, सबको इतना दे रहे ना, मना कर दिया दादी ने, दादी नहीं बाबा, बाबा ने मना कर दिया। तो क्योंकि उसके अंदर तो था नहीं, वो कैसे दिया, क्योंकि यज्ञ का कुछ कार्य चलाने के लिए कुछ चमत्कारी भी दिखाना होता है। जैसा दादी का हमने वो हर्निया का एपेंडिक्साइटिस बोला ना, ऑपरेशन कर दिया बैठे बैठे, तो ऐसा बाबा जब बतन से सबको देना शुरू कर दिया, वही 8-10 इलायची दाना, 8-10 खंड की दाना सबको देता गया, देता गया, देता गया। बाद में जब दादी जी को पूछे, बोला मुझे क्या मालूम है, वो तो ऊपर वाला के काम है। तो ऊपर वाला कैसे रहता है, वो तो उड़ते रहते हैं ना। ऐसा बहुत सारे घटना आप अंदर में समा लेंगे तो आपका स्थिति कैसा होगा। बाबा भी आप देखो, बहुत सारे घटनाएं जब यज्ञ में होते हैं तो बाबा क्या करते हैं, बाबा कभी बदला नहीं लेता था, हर चीज को पॉजिटिव प्रीति से, कुछ हुआ ना उसको ऐसा करो तो ऐसा होगा, खुद बदल कर दिखाया, तब तो यज्ञ आज तक ऐसा चल रहे हैं। यहां भी हर बच्चे क्या करते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। एक तिवारी साहब आए थे जो पत्रिका के मालिक थे, नरेंद्र तिवारी, इंदौर के, इंदौर से। उनको यहां के एक जगह में स्लोगन पढ़ लिया था, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, अकेला खुद परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व कैसे परिवर्तन होगा। तो बहुत लोग बहुत रीति से समझाया, उन्होंने उनके दिल को नहीं जांचा, लास्ट में दीदी जी के पास लेके गए। दीदी जी उस टाइम क्या करते थे, एक जब जाते थे ना एक डायरी ईश्वरीय सौगात देते थे और उसमें 300-400 स्लोगन होते थे। और दादी को दादी जी ने हाँ दीदी जी ने वो भाई को बोला इसमें हमारा हाथ नहीं, अब डायरी आप लो कहीं भी पन्ना खोल लो आपके लिए जो स्लोगन वो वरदान हो जाएगा। उन्होंने खोल दिया और क्या आया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। वो कार्य किसका था, परमात्मा का है ना। तो उन्होंने यहां से जाके कम से कम 15 दिन तक ये यज्ञ के बारे में कोई अच्छा टॉपिक हो ये सब उन्होंने डालना शुरू कर दिया। सिर्फ 15 दिन नहीं, बहुत टाइम तक कहीं अच्छा टॉपिक कहीं से भी मिलता है उसको आर्टिकल बना के उन्होंने डालते थे। तो बहुत सारे चमत्कारी कार्य भी दिखाना होता है। बाबा ऐसा यज्ञ को निमित्त बन के सबका दिल को ठीक ठाक रख के बहुत सारे कभी कभी कार्य होता है उसको भी करा देते थे। आप सुना होगा शांत्री दादी बाबा के यज्ञ में बारे में सब जानते थे क्योंकि बहुत पहले से बाबा के अंग संग रहा ना। जब 21 जनवरी बाबा जब शरीर छोड़े उसके पहले शांत्री दादी ने मैसेज लाए थे और दीदी जी ने दादी मैंने सब ठीक किया, गुलजार दादी बाबा के पास जाएंगे और बाबा का मैसेज ले आएंगे। लेकिन उस दिन दीदी जी ने क्या बोला, जब गुलजार दादी उठ के सांदली पर जा रहे थे बाबा ये दीदी जी ने बोला ये गुलजार कहाँ जा रही हो, संदेशी माने शांत्री जाएंगे। तो शांत्री दादी खुद ऑफर किया है वही जाएंगे, मैं तो सब जानता था। कुछ बोलेंगे तो बोल में ये माने अपना कुछ दिखा के कर रहे थे हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया दूसरों को ऑफर किया है और दादी जी को बताया जे गुलजार दादी जाएंगे। देखो उस टाइम ये लोग तो घर के परिवार के हैं ना, अपना हक दिखाता था तो बहुत कुछ कर देता था, लेकिन नहीं, निमित्त और निर्माण बन के जब हम रहेंगे तो हमारा क्या होगा, उड़ती कला संस्कार बन जाएंगे। हम कुछ नहीं, हम तो इंस्ट्रूमेंट होके कर रहा हूं। देखो बाबा भी जब यज्ञ का सारे सब चलो चल संपत्ति दान किया ना, अपना परिवार किसी को नहीं रखा क्योंकि उसमें मैंपन आसक्त था। तो शांति दादी भी अपने लौकिक परिवार के हैं, नारायण दादा भी थे, निर्मल शांत दादी भी थे, हाँ ब्रिजेंद्र दादी भी थे, किसी को रखा नहीं। किसको किसको रखा, प्रकाश मुनि दादी का 2 बहन किशनी दादी प्रकाश मुनि दादी मामा और एक रूप कोई बहन है और 4 माता जैसे मनमोहिनी दीदी है, महेंद्रा है, शांतामणि दादी है, ऐसा तो 8 जन का कमिटी बना के उन्होंने दान कर दिया था। तो बाबा भी बोलते हैं ब्लड रिलेशन खत्म कर दो। कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग अपने परिवार से कोई आ जाता है ना उसके लिए कितना टाइम दे देते हैं, हाँ बाहर वाले आते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारा तो ये सेवा है ये वो सेवा है। लेकिन तो बाबा बोलते हैं सार्विक दृष्टिकोण। तो ये यज्ञ का जो नींव है कैसे चल रहे हैं, कृष्ण भाई को पता है ना, जो ब्रिजेंद्र दादी है ना उसका लौकिक पति, दो बेटा थे, एक कृष्ण एक नारायण। देखो ब्लड रिलेशन कैसे खत्म किया उन्होंने, उन्होंने दो एक बार दादी के सेंटर पर आने के लिए कोशिश किया था, इसलिए उनको देखने के लिए कोर्स नहीं। तो दादी ने क्या बोल दिया, कोर्स करना है तो वहां का जो नजदीक सेंटर है ना वहां जाके करे। कैसे खत्म कर दिया, जो एक बार त्याग करके आए हैं ना छोड़ के, दोबारा मोड़ के देखा नहीं। वो तो चाहे तो बुला भी सक करके उसको, लेकिन नहीं, उन्होंने ब्लड रिलेशन वहां से खत्म करके आए, क्योंकि वो दोबारा शादी किया था। बाद में भी जब सॉरी छोड़ा ना, तो किसी ने बोला आपके पति सॉरी छोड़ दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया, हमारा तो पति अजर अमर है, शिव बाबा है, अविनाशी है, हमारा पति कैसे छोड़ मर सकता है। तो ऐसा ऐसा घटना जब सुनेंगे तो आपका दिल क्या होगा। अभी एक उदाहरण क्या दिया था, बर्फ पानी और भाप। भाप कितने डिग्री से होता है, नहीं भाप बनता है वो तो 100 डिग्री में पानी उबलते हैं, ऐसा 10-15 डिग्री से भाप, तो 10-15 डिग्री से भाप बनता शुरू है। तो पहले पहले जब हम ज्ञान में आए थे, थोड़ा सा भी ज्ञान का कोई अच्छा माने रस था, उसको रस मिलता है तो हमारा स्थिति क्या होता है, जैसे उड़ जाता है, उड़ना शुरू कर देता है। थोड़ा सा वहां का बूंदे लगता था ये बहुत अमृत का बूंदे हमें मिल गया, बाद में थोड़ा क्यों डिम हो जाता है, बाद में बहुत सारे मिल जाता है, बहुत सारे मिल जाने के बाद लगता है ये तो मुझे पता है, ये फीका फीका लगता है, लेकिन नहीं, बाबा का मुरली वही एक ही है। हर दिन बाबा वही मुरली सुनाते हैं, उस दिन देवेंद्र भाई बोला था ना, हर एंगल में सुनो तो आपको, हाँ वो 80-90% तक बोला हमें याद होता है। तो बुद्धि भी शतप्रथन चाहिए, 100-108 कितना पॉइंट सुना देते हैं, बुद्धि स्वच्छ है इसलिए तो वो धारण करके सुना रहे हैं। तो ऐसा आप देखिए, जो मुरली का हमें पॉइंट मिलता है ये हर दिन का हर एंगल से देखना है हमें। हर एंगल से देखेंगे तो क्या होगा, 5 साल पहले तो चल रहा था, कितना बार ऐसा रिपीट भी हुआ होगा, अभी भी सुन रहा हूं लेकिन कैसा लगता है, ये नहीं पॉइंट है। और जो भी मुरली है, जैसे अव्यक्तवाणी लो कुछ भी लो, आज जब सुना रहे आज का परिस्थिति अनुसार वो सारे पॉइंट आपको मिल जाता है। तो बाबा कैसे त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी बनकर ये सारे सब जो पॉइंट सुनाते हैं तो आप क्या बनेंगे। आप जब धारण करेंगे एक एक रत्न तो क्या होगा आपका, जैसे उस दिन बोला ना, जो रंग 7-8 प्रकार की रंग बोला है, 8 रंग बोला है, अब ज्ञान का रंग एक बार लगा दो क्या होगा, दिखेगा नहीं बाहर से लेकिन अंदर आपका गदगद होगा। हाँ, तो अगर ज्ञान के गहराई में जाओ तो सागर में तले में क्या होता है, रत्न होता है, ऊपर ऊपर तो मछलियां, एक एक बार मुरली में बाबा ऐसा बोलते थे, ऊपर तो मछलियां अंदर नीचे जाओ तो रत्न मिलेंगे। ऐसा गुणों का रंग चढ़ाओ तो क्या होगा, क्योंकि हमारे ब्राह्मण जीवन का मूल फाउंडेशन है गुण। कुछ भी सेवा में जाओ, आपके अंदर खटासपन चेहरा है, कुछ आ गया, किसी के बात से टकराव हो गया तो सभी क्या समझेंगे, ये तो ऐसा ही है, लेकिन गुण जब मिल जाता है ना, संस्कार मिल जाता है, तो क्या होता है? हमारे एक चित्र है रास चित्र, र मतलब ज्ञान, आस मतलब आनंद। ज्ञान के आनंद में जब एकदम आत्महारा हो जाते हैं, अपना शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, तो हमारा ये उड़ति कला होता है। तो उस दिन जो ये जो आठ प्रकार की रम बाबा ने चढ़ा दिया, तो हर दिन बाबा जैसा पिचकारी मार के हमें रंगा रहे। ज्ञान का रंग गुण में कितना है? ज्ञान तो सागर जैसा है, उसका कोई नापतोल कर नहीं सकते हैं। गुण भी अथाव है, लेकिन लिस्ट में 36 गुण। और उतना भी धारण कर ले, जीवन क्या होगा? गुणवान गुणवती हो जाएंगे, सबके नजर में आप आ जाएंगे। ये तो जैसा देवता जैसा है। और देवता का हाथ कैसे होता है? दातापन की। तो आपका जीवन क्या होगा? सभी देवता नजर में देखेंगे तो आपका स्थिति ऊपर उठ जाएगा ना। और कोई ऊपर से कड़वा बोल बोल दे, जैसा मन की स्थिति थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ऐसा ज्ञान का रंग, गुण का रंग, सुभावना की रंग, सबके प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मने हर टाइम सबके प्रति सुभावना शुभकामना का रंग लगाओ, तो आपका जीवन भी कैसा होगा? श्रेष्ठ बन जाएगा। एक कहावत है, चलत चित्तम चलत वित्तम चलत जीवन जौवनम चलाचलम इदम सर्वम कीर्ति यस्य सजीवति। इसका अर्थ क्या है? थोड़ी देर के लिए नाश हो जाएगा। वित्त माने अपना धन संपत्ति जो है, वो भी एक दिन चला जाएगा। चलत जीवन जौवनम, अपना जो यूथ जीवन है ना, जीवन और जौवन, वो भी एक दिन चला जाएगा। रहेगा क्या? कीर्ति यस्य सजीवति, अपने जो अच्छा कार्य कर रहे वो जी रहेंगे। जैसा बाबा बोलते हैं ना, आत्मा अमर है। कौन सी अमर? आत्मा इस शरीर के द्वारा जो अच्छा कार्य करता है ना, वो अमर बन जाता है। क्योंकि जैसा महापुरुष है कोई भी, वो हम लोग उसको स्मरण क्यों करते हैं? अच्छा कार्य करके गया है ना। वैसा ब्राह्मण बाबा क्या बोलते हैं? ये सर्वश्रेष्ठ है, ये जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, और इसके द्वारा जो कार्य हो रहे वो अविस्मरणीय हो जाएंगे। हो भी रहे, क्योंकि अब देखो उस दिन ये भाई ने 108 पॉइंट बताया ना, ऐसा ज्ञान का भी बताया। अब बहुत सारे ये बाद में जाके ऋषि मुनि बनेंगे, और ये जो हर देवता का जो शतपथी नाम है ना, और 108 वाला नाम, ये ऋषि मुनि बन के वहां जाके बनाएंगे। झूठ नहीं, क्योंकि अभी इतना टैलेंट कला है, तो वहां जाके क्या नहीं कर सकते हैं। वहां तो ऋषि मुनि जब शास्त्र लिखते हैं, वो थोड़ा शरीर से डिटैच हो जाता है, उसके सामने दिखता है, वो लिखना शुरू कर देता है। अपना थोड़ा बहुत तो ज्ञान है, लेकिन जब अशरीरपन अवस्था होता है ना, उस टाइम उसको दिखता है। तो उसको वो लिखना शुरू कर देते हैं। एक बार हाँ, वो तो दिखता है, मन की दर्पण में दिखता है, उसको खाली रूप देने के बाद होता है। एक बार गीत गोविंद जब वो रचना कर रहे थे, तो उसमें लास्ट का श्लोक वो लिख नहीं पा रहे थे। सरल गर खंडनंग मम शिरसि मंडनम, लास्ट में जो है देही पद पल्लव मुदारम। पद पल्लव मने हे कृष्ण, उस टाइम तक कृष्ण को भगवान मानते हैं, आप चरण कमल मेरे हाथ पे रखो। वो स्नान करने गया और ये लास्ट का लाइन उसको दिमाग में नहीं आ रहे थे, कैसे लिखे कैसे लिखे। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके, माने उसका जो पति है ना उसका रूप धारण करके आके लिख के गया। फिर वो स्नान करके जब आए तो उसका कुछ ये करके बोले, अभी तो आए थे फिर अभी स्नान करके दोबारा क्यों ना, मैं तो अभी स्नान करके आ रहा हूं। बोला नहीं अभी लिख के गए ना। तो देखा उन्होंने लिख दिया लास्ट का जो लाइन है उन्होंने लिख दिया। तो भगवान भी क्या करता है, भक्तों के अधूरा काम पूरा कर देते हैं। तो ये स्वयं परमात्मा कौन है, हर आत्मा का प्यास नहीं बुझाएंगे। जैसा वो दादी का उदाहरण दिया, उसका ऑपरेशन कर दिया ना, दादी क्या बोला, उस दिन से हमारा पांव तो आज धरती पर नहीं, क्योंकि सुप्रीम सर्जन आके इतना बड़ा जो बाधा विघ्न है उसको समाधान कर दिया बिना काटपीट के। तो उसका हाल क्या है, ऐसा हर ब्राह्मण आत्मा के भी अंदर कुछ कुछ भावा ऐसा मिरेकल कर देते हैं ताकि हर आत्मा उड़ते रहते हैं, क्योंकि यही तो साधन है, यही उड़ने का साधन है। अच्छा, ओम शांति।